सात संग जी, प्रेमा ने बोला ये जो नज़ारा आज औरंगाबाद की धरती पर बना हुआ है, जिसका दर्शन करने का, भाग बनने का सौभाग्य हम सबकी झोली में आया है। बार बार जिक्र भी सुन रहे थे कि किस तरह से जो यहाँ पहली बार आए, आप संतों का प्यार देखा, सद्गुरु के दर्शन किए, तो उनके मन के भाव कुछ इस प्रकार के हमने ऐसा कुछ तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। तो भाव कुछ इस प्रकार आ रहे थे दास के ख्याल में कि यूं तो वाकई बेशक ये निराकार सर्वव्यापी है, हर देश में वैसे का वैसा ही, जैसे अभी सुना भी, चाहे वह गांव है या बड़ा शहर है, निरंकार वैसे का वैसा ही मौजूद है। पर फिर भी इस वक्त, इस पल, जो इस धरा पर नज़ारा बना हुआ है, वो इस दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि साकार हमारे बीच में मौजूद है, सतगुरु स्वयं यहाँ मौजूद हैं। और जहाँ ये जिस पल होते हैं, उस स्थान का नज़ारा, उस स्थान पर जो आनंद वर्षा हो रही होती है, वो अद्वितीय है, वैसा दोबारा कहीं या दूसरी जगह कहीं नहीं हो रहा होता। जिक्र भी हुआ अभी कल्याण यात्राओं का, और कैसे राजस्थान और गुजरात होते हुए जब यहाँ पहुँचे दो दिन पहले समागम से, तो किस प्रकार तूफान बारिश, लगभग ऐसी स्थिति कि आधे से ज़्यादा रिहायशी टेंट्स गिर गए, फट गए। पर जब रात को, उसी रात लगभग 3-4 बजे दास का ग्राउंड में आना हुआ, तो नज़ारा जो हर वक्त संतों का जीवन जिस प्रकार होता है, कहीं गीत गाए जा रहे हैं, कहीं ढोलक बज रही है, कहीं महापुरुष नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर भी शिकवे का भाव नहीं, कहीं पर भी ऐसी कोई भावना नहीं कि हम तो इतने अच्छे भाव से, इतने अच्छे, इतने बड़े परोपकार का हिस्सा बनने आए और फिर ऐसे क्यों हुआ। सारे के सारे इस प्रभु की, परमात्मा की रज़ा में झूम रहे थे, और यही सदगुरु के द्वारा भक्ति हमारे जीवन में आती है, जिधर वाकई आनंद वर्षा, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और निरंतर 75वें समागम से ही रूहानियत का, इंसानियत का जिक्र होता जा रहा है, रूहानियत इंसानियत संग संग। आज भी हमने सुना, पिछले 2 दिनों में भी हमने सुना, बहुत चर्चा इस विषय पे, और इंसानियत पर चर्चा सारी दुनिया ही कर रही है, अलग अलग तरीके से कर रही है। और दास का मानना ये है कि समाज में अच्छा करने को इतना प्रधान मान लिया गया कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक विचारधारा प्रबल होने लगी, मजबूत होने लगी, एक विचारधारा जो कहती है कि अच्छा कर तो रहे हैं, अच्छा करना ही है, तो फिर इससे ज़्यादा धर्म और क्या है, इससे ज़्यादा धर्म की तो और कोई बात ही नहीं। अगर सब कुछ पा के, परमात्मा का जिक्र करके भी अच्छा करना है, तो वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से धर्म की बात, फिर कहाँ से परमात्मा की बात। बात छोड़िए, ज़रूरत ही क्या है। ये एक विचारधारा, अक्सर कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऐसे समाज में जहाँ दतार प्रभु की कृपा से इंसान में बल आ गया है कि वो कोई कल्याण कर सके, किसी का, समाज का परोपकार कर सके, चाहे वह धन से, चाहे किसी और तरीके से, वहाँ ये विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रबल होती दिखती है। कि अच्छाई तो जब हो रही है तो यही तो सब कुछ, फिर ये भी मान लिया जाता है कि बस इसी को ही धर्म कहा जाता है, ये भी मान लिया जाता है कि परमात्मा भी बस इतना ही चाहता है। और इसमें इंसान की गलती नहीं है, ये समाज ने इसी प्रकार से धर्म की परिभाषा को बनाया। बहुत सीमित हम फिल्मों में देखते हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध गाना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये बड़ा ही प्रसिद्ध एक गीत। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी सोच ने ज़रूर इंसान में समाज सुधार की, लोगों के कल्याण की भावना डाली होगी, ज़रूर बहुत लोग दानी बने, ज़रूर ऐसे बहुत लोगों तक साधन पहुँचे होंगे जिनको उन साधनों की ज़रूरत थी, ज़रूर समाज का सुधार इस सोच ने किया है। पर कहीं ना कहीं धर्म की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा बहुत ही सीमित कर दी कि आप ऐसे करेंगे तो परमात्मा आपको ऐसे देगा। साथ संगत, ये ख्याल आ रहा था कि जो एक पैसा दे के 10 लाख की उम्मीद कर रहा है या मांग कर रहा है, तो फिर दोनों में गरीब हुआ कौन? गरीब तो वो हुआ जो एक पैसा देते वक्त भी 10 लाख की उम्मीद कर रहा है या मांग कर रहा है। ऐसी परिभाषा ने या ऐसी सोच ने इंसान को एक मांगने का ढंग दे दिया। ये दान कहाँ रहा, ये तो मांगने का एक और तरीका बन गया। क्या मैं हाथ फैला के नहीं मांग रहा, मैं दान करके मांग रहा हूँ कि इतना दान कर चुका हूँ, अब मेरे अकाउंट में इतने आप चढ़ा लीजिए कि मेरे बनते हैं। ऐसी सोच, ज़रूर सामाजिक तौर पर इसके बहुत फ़ायदे हुए, इंसान चलता ही ऐसे है कि उसको मोटिवेट करना होता है तो कोई ना कोई उसको कहा जाता है कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। काम काज में होते हैं तो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो उसको बोनस दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। तो यही उस प्रकार के, चलो कम से कम परमात्मा तक नहीं पहुँचा सकते हम, तो समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए ऐसी विचारधारा को प्रबल करें कि अच्छा करो तुम्हें भगवान और देगा। और ज़रूर अच्छे कर्म हुए होंगे, होते आए हैं, देखते हैं। और साथ ही फिर इसका एक पहलू और आता है कि अब अच्छाई तो हमने सोच ली कि कैसे बढ़ानी है, पर साथ साथ बुराई को भी रोकना है। बुराई को रोकने के लिए फिर समाज ने एक परिभाषा और बना ली कि बुरा मत करना, वरना कहीं तुम्हारे साथ बुरा ना कर दे परमात्मा। बुरा ना करना, डरो। तो इस पूरे के पूरे डेफिनेशन में, इस पूरी की पूरी परिभाषा के अंदर धर्म का असली मतलब कहीं खोसा गया या खोसा जाता है, क्योंकि जिसने नियम बनाए वो भी इंसान, जिसने नियम बताए वो भी इंसान, और जिसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं वो भी इंसान। कुछ तो उसकी पालना कर लेते हैं, पर फिर हम इंसान की बुद्धि को भी जानते हैं, वो कितना चालाक है, हर नियम का तोड़ उसको पता है कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे ही कहीं सुनने में मिला कि कोई बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत लूटपाट, सारे ही गांव में, शहर में जिधर वो लूटपाट करता था उसके नाम से हाहाकार। वो किसी जगह किसी के घर पे लूटने गया उस घर को, तो घर का मालिक जाग रहा था, उसने उसको बंदूक दिखाई, ज़ोर ज़बरदस्ती उसका घर लूटा। और जैसे ही पूरी लूट के उस घर की सारी सामग्री जा रहा था, तो वो इंसान जिसका घर था वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, भगवान से नहीं डरते, क्यों ऐसे करते हो, डरो। तो वो सामने से लुटेरा बड़ी ज़ोर से हंसता है, कहता है तुम भगवान की फ़िक्र छोड़ दो, उसके साथ तो पार्टनरशिप है। साथ संगत, जिसका घर लुट रहा होता है वो तो उसके हाल बेहाल, पार्टनरशिप, चलो अब सब कुछ लूट के जा रहे हो तो इस पार्टनरशिप के बारे में भी बताते जाओ। वो कहता है जो लूटता हूँ आधा दान कर देता हूँ, पार्टनरशिप पक्की है अपनी। तो साथ संगत, कहने का भाव कि किस प्रकार से ये ऊपर ऊपर के नियम कहीं पहुँचाते नहीं हैं। ऊपर से थोपी गई अच्छाई ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती, इसलिए फिर सद्गुरु की ज़रूरत, सद्गुरु का महत्व, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान जब देते हैं तो वो कर्म से पहले हमारे परिवर्तन की बात करते हैं, वो अच्छाई से पहले खुद को हमें अच्छा करते हैं। सद्गुरु ने कल परसों भी ये फरमाया कि ये इनसाइड आउट जर्नी है। तो सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से हमें ये नहीं पहले कहते कि बस अच्छा करते जाओ अच्छा करते जाओ, पहले इस अच्छे के साथ जोड़कर हमें अच्छा करते हैं, फिर अच्छाई तो अपने आप ही होती रहती है। होती क्या, बहती है, क्योंकि फिर उसके पीछे कोई चालबाजी, कोई डर, कोई मांग, ये सब नहीं, बल्कि प्रेम। जो बात सुनते हैं कि देव माजा मी देवाचा, तो वो बात यही कि ये जो देव के साथ मिलाने वाला ही सद्गुरु है, और देव से जब मैं मिल जाता हूँ तो जर्रे जर्रे में फिर इस देव के ही दर्शन है, पत्ते पत्ते में इस देव के दर्शन है। और ये जो मेरी मांगने की आदत, जो दुनिया में मैं भटक रहा हूँ, सद्गुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके मुझे बताते हैं कि असली दाता कौन है, ये सारी दाताओं का दाता कौन है। और इसलिए फिर अवतार वाणी में शहनशाह जी ने लिखा है कि संत अवतार मिले जे पूरा, मंगता शाह हो जांदा है। ये मंगते को शाह कर देते हैं, ये विरद है सद्गुरु का। और यही धर्म है, यही सच्चा धर्म है कि इस परमात्मा को जानने के बाद ये जो इंसान एक मंगते की तरह जीवन जी रहा है उसको ये शाह बना देते हैं। इसलिए इनको शहनशाह कहा जा सकता है, क्योंकि ये मंगतों को शाह बनाते हैं, इसलिए सद्गुरु शहनशाह है। साथ संगत, यहाँ दुनियावी बातों का या दुनियावी पदार्थों का इतना महत्व नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके तो फिर वो चाहे सोना है या मिट्टी है, दोनों ही मिट्टी हैं, ये भेद पता चल जाता है। ये मुझे बताते हैं कि तू है क्या, तो किसका स्रोत है, किसका अंश है, ये तेरा अस्तित्व है। तो इसलिए राजा जनक भी जब सारा राजपाट होने के बाद भी खुद को मंगता ही समझते थे, गुरु अष्टावक्र की कृपा हुई तब उनको वो दात, जिसको मीराबाई ने राम रतन धन कहा, वो प्राप्त किया। तो ये जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है, उससे पता चलता है कि मैं असल में हूँ क्या। ये जो धर्म की बातें मैं अभी तक सुनता था, अध्यात्म की बातें मैं सुनता था, ये है क्या। और सद्गुरु ने चाहे किसी भी रूप में आए इस धरा पर, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि तुम अच्छा करने की बात छोड़ो, तुम बस अच्छे होते चले जाओ। और अच्छा कैसे किया जाएगा, शुभ कार्य करने की छोड़ो, शुभ हो जाओ। और शुभ कैसे होंगे, इस शुभ के साथ जुड़कर, इस शुभ को जानकर। यही एक उद्देश्य के साथ सद्गुरु धरा पर आते हैं। और फिर जब देखते हैं दुनिया के अंदर, कल सेवा का भी एक जिक्र सुना कि किस तरह वो पंखे दान किए, सद्गुरु ने अपनी प्रवचनों में फरमाया, पर पीछे उसके क्या कारण। तो ऐसी सोच के लिए भी लिखा है कि फल कारण सेवा करे, मन का तजे ना काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। तो ऐसे भावनाओं से जो कार्य किए जाते हैं, सेवा की जाती है, वो सेवा नहीं है, वो तो कोई सौदेबाजी है, वो तो कोई मांगने का मैंने एक नया तरीका, जैसे दास ने पहले भी कहा, बना लिया है। तो संतों ने हरगिज चेतन किया कि हरगिज इस तरह से ये मत समझने लगना कि तुम कहीं सेवा के रास्ते पे चल पड़े हो। मन में कोई मांग है तो फिर वो सेवा नहीं, वो तो फिर दुनिया के जैसे सौदे हैं वैसे ही एक सौदा तुमने और बना लिया है। और जब ये परमात्मा जीवन में आ जाता है, सद्गुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान झोली में आ जाता है, तो जब ये कोई बल अगर बख्शा भी है कोई सेवा करने का, कोई दान करने का, तो इतनी विनम्रता भर जाती है उस संत के अंदर जब वो कोई दान करता है, सेवा करता है, किसी के भी काम आ पाता है, कि वो हमेशा उस भाव में अगर दुनिया देखती है कि वाह कितना परोपकारी, पर जब उसकी वाहवाह हो रही होती है, उसके भाव कुछ इस प्रकार बन रहे होते हैं कि मेरी वाहवाह क्यों कर रहे हैं, मालिक मेरे अंग संग है, जिसने मुझे दिया, जिससे मुझे प्राप्त हुआ, मैं तो बस आगे दे रहा हूँ, देने वाला तो ये है, ये मेरी वाहवाह क्यों कर रहे हैं। वो शर्मिंदा भी होने लगता है कि मालिक संग खड़ा है पर वाहवाह मेरी हो रही है। ऐसी अवस्था फिर बन जाती है संतों की। इसलिए रहीम जी ने वो भी कहा कि देवन हारा कोई और, देवन भेजत है दिन रैन, कि दिन रात भेज रहा है, देवन हारा कोई और है, मैं नहीं हूँ। लोग भरम हम पर धरे, हम पर भरम कर रहे हैं लोग, लोगों को भरम है कि मैं कोई बहुत बड़ा दान करने वाला बन गया हूँ। याते नीचे नैन, इसलिए मेरे नैन नीचे रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप दान करते वक्त क्यों आपकी आंखें झुकी रहती हैं, क्यों नहीं देखते, तो वो उनकी विनम्रता, वो संत का स्वभाव, क्योंकि उसको पता है देवन हारा तो कोई और है। और सदगुरु उस देवनहार से मिलाते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही सच्चा धर्म है, क्योंकि ऊपर ऊपर से बिना इस जानकारी के अच्छाई, अच्छी चीज़ें बहुत मुबारक हैं। दास बिल्कुल नहीं निकाल रहा ऐसे भावों को या ऐसे कर्मों को। बड़ी ज़रूरत है समाज की कि ऐसे कर्म किए जाएं, लोगों के काम आया जाए। पर दास बस इतना सा ही अनुरोध करता है कि जो बात के पहले हम अच्छे हो जाएं, फिर अच्छाई तो अपने आप बहेगी। क्योंकि इस परमात्मा को जाने बिना की जो अच्छाई है या अच्छे कर्म है, वो समझो कि इस प्रकार के जैसे कोई कागज़ का फूल है और उस पर हम परफ्यूम छिड़क दें, कितना ही परफ्यूम छिड़क दें, कितनी ही खुशबू उस पर डाल दें ऊपर से, वो खुशबू उड़ जाएगी, वो कागज़ का फूल कागज़ का ही रहेगा। सुंदरता वो भी बढ़ाता है पर है वो कागज़ का ही। उस पर महंगे से महंगा परफ्यूम हम छिड़क दें, कुछ पल की खुशबू, काम भी वो ज़रूर आएगा पर जीवित नहीं है, मरा हुआ है, कागज़ का फूल है। और सद्गुरु ऐसा उपकार करते हैं कि इस कागज़ के फूल को भी असली फूल बना देते हैं। यही सब कुछ है, यही धर्म की असली परिभाषा, कि इंसान तो ये एक मरा हुआ जीवन जी रहा है, एक कागज़ के फूल का तेरा जीवन है, तो क्यों नहीं एक असली फूल की तरह खिलना चाहता। तो धर्म किसी और के लिए किए जाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो मेरी अपनी निजी चीज़, मेरी अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। ये हर एक कागज़ के फूल के लिए मौका है कि तुम भी असली फूल की तरह कोमल, सुंदर, खुशबूदार बन सकते हो, और वह सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कृपा से होता है। और सिर्फ यही धर्म की, ब्रह्म ज्ञान असली परिभाषा, कि पहले हम खुद जो हैं उसको पहचान लें, उसके साथ एकमिक हो जाएं। फिर जैसे दास ने जब मौका मिला था समागम पर भी समालखा में कहा कि फिर हम खुद ही प्रेम बन जाते हैं, तो फिर प्रेम कोई एक्शन नहीं रह जाता, हम प्रेम बन जाते हैं तो फिर जहाँ जाएंगे वहाँ प्रेम ही लेकर जाएंगे अपने साथ, और इसलिए फिर प्रेम करना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि फिर वो आप हो जाते हैं, हम हो जाते हैं। शांति की भी बात की जाती है कि शांति किस प्रकार से लाई जाए। शांति भी सिर्फ वही ला सकता है जो पहले खुद शांत हो चुका है। ऊपर ऊपर से कितनी शांति कोई ले आएगा, कितनी देर ऊपर ऊपर के नियम, कितनी देर ऊपर से थोपे हुए शिष्टाचार हमारे काम आ जाएंगे। जो खुद शांत हो गया वही शांति लाएगा, वो जहाँ चलेगा अपने साथ शांति लेके चलेगा। मंगलाचरण में भी लाइन सुनते हैं, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। तो एक कल्याण की मांग भी सिर्फ वही कर सकता है जिसका पहले खुद कल्याण हो चुका है, क्योंकि उसको ही पता है कि कल्याण कहते किसे हैं। कि जब ब्रह्म ज्ञान झोली में आया, अपने बंधनों से मैं मुक्त हुआ, तो मेरा असल मायने में कल्याण हुआ है। ऐसी ही कामना कि हे दातार, ये कल्याण सारी दुनिया का हो, क्योंकि इसी से सारी दीवारें गिरेंगी, इसी से ही प्रेम स्थापित होगा, इसी से ही स्वर्ग के नज़ारे बनेंगे। ये जो कल्याण आपने मेरा किया है ये सारी ही दुनिया का हो, इसलिए ही ये मांग। सत्संगत, कहना सुनना बहुत आसान, पर जीवन में जब तक ये परिवर्तन नहीं आता, अगर मेरा जीवन आज भी वैसा ही है जो ब्रह्म ज्ञान से पहले था, या इनके चरणों में आने से पहले, या इस ब्रह्म ज्ञान की दात पाने से पहले था, वैसा ही जीवन मैं जी रहा हूँ, वैसे ही मेरे मन के भाव हैं, वैसी ही दौड़ में मैं लगा हुआ हूँ, हो सकता है मैंने मैदान बदल लिया बस, पहले शायद किसी और चीज़ के लिए भागता था, अब किसी और चीज़ के लिए भाग रहा हूँ, तो फिर कहीं बात अभी बनी नहीं है। यही निरंतर सद्गुरु समझा रहे हैं कि ये रोम रोम में ये नुक्ता बस जाए, ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है ये बस जाए, तभी असल मायने में हम मंगते से शाह बनेंगे, तभी बात बनने वाली है। क्योंकि इतनी बड़ी दात पाकर भी मेरा जीवन अगर वैसे का वैसा ही चल रहा है, तो फिर कहीं मैं उस दात से चूक गया हूँ, वंचित रह गई हूँ। तो यही बख्शन हारे होने का सबूत है सद्गुरु के, कि ये फिर भी मुझे चेतन कर रहे हैं, फिर भी मुझे मौका दे रहे हैं। और दास ने जैसे पहले भी कहा कि धर्म, अध्यात्म, परमात्मा ये किसी और के लिए करने का विषय नहीं है, ये अपने खुद के लिए, ये ऐसे है कि जैसे कोई बहुत ऊंची लहर समुद्र में उछल रही है और उसको समुद्र का नहीं पता, उसको लगता है वही सब कुछ है, और वो पूछती है बाकी लहरों से कि तुमने कभी समुद्र के बारे में सुना है, कि समुद्र क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ उस लहर का मिटने की देरी है, झुकने की देरी है, सिर्फ समुद्र का पता ही नहीं चलता, वो आप समुद्र हो जाती है। तो ये एक बहुत ही निजी विषय, अगर हमें लगता है हम किसी और के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए शायद ये करना पड़ेगा, तो इसके आनंद से हमेशा वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जब तक दूसरों पर आधारित है मेरे एक्शंस, तो फिर कहीं ना कहीं मैं एक सांसारिक परिभाषा धर्म की बना लूँगा, फिर मैं कहीं ना कहीं इस असली दौलत से, इस असली राम रतन धन से वंचित रह जाऊँगा। दास को ऐसे ही स्कूल कॉलेज के दिनों की कोई बात याद आई कि जब कॉलेज में पढ़ते थे तो जो दोस्त मित्र हॉस्टल में रहते थे या पीजीज में रहते थे, वो कई बार लेट अगर होना क्लास के लिए तो बिना नहाए धोए ही आ जाना। अक्सर इस उम्र में बस ऊपर से बालों को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, सेट किया, परफ्यूम मारा, तो अक्सर हंसी मजाक में भाव यही होता था कि किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि मैं नहीं नहा के आया हूँ, किसी को पता थोड़ी चल रहा है, पर मुझे तो पता है कि मैं नहीं नहाया। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपना अगर ये ऐसे बिना नहाए काम चलाता था तो हफ्ता, वो भी फिर उसको नहाना पड़ता था उसके बाद। तो साथ संगत भाव यही कि जब तन के लिए मैं किसी और को कब तक बेवकूफ़ बनाऊंगा, कब तक किसी और पर आधारित मेरी अपनी स्वच्छता। और दास सिर्फ तन की बात नहीं कर रहा यहाँ, यहाँ मन की भी जो बात, कि कब तक किसी और के लिए मैंने स्वच्छ मन दिखाना है, कब तक किसी और के लिए मुझे ये दिखाना है कि वो क्या कहेंगे। तो ये जो नुक्ता सद्गुरु दे रहे हैं, इसको अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश की जाए, अरदास की जाए, ये झोली में ज़रूर आता है। अभी हमने सुना भी, स्वच्छता की बात हो रही है तो दास का ख्याल वहीं गया कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन। तो यहाँ भी ये रूहानियत और इंसानियत का एक बहुत बड़ा सद्गुरु का संदेश कि जब ये ख्याल आया या सद्गुरु के चरणों में बात आई कि इस तरह से ध्यान है, तो ये आशीर्वाद मिले कि वाटर बॉडीज़ को क्लीन किया जाएगा। तो हजूर ने कहा कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन, क्योंकि जल तो कोई भी साफ कर सकता है, मनों की सफाई सिर्फ सद्गुरु और उनके ब्रह्मज्ञानी संत करते हैं। कि स्वच्छ जल अगर कहा जाए तो दुनिया में शायद बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कर रही होंगी। और फिर जो आशीर्वाद आया इस प्रोजेक्ट के नाम के लिए सद्गुरु की तरफ से, प्रोजेक्ट अमृत, वो यही भाव कि संतों के चरण भी तो पड़ेंगे उस पानी में, वो साफ ही नहीं होगा, वो तो अमृत का रूप ले लेगा। तो साथ संगत, जो इंसानियत रूहानियत के बाय प्रोडक्ट की तरह आती है बाहर, जैसे मक्खन निकाल रहे थे और छाछ साँच मिल जाती है, तो वही मुबारक है। ऐसे ही भाव सबके जीवन में आए, ऐसी सोची हम सबकी झोली में आए, किसी और के लिए नहीं अपने लिए इस अध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो जीवन बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही आसान, बड़ा ही आनंदमय होता रहता है। हर जगह हर पल दातार प्रभु का एहसास जीवन को बहुत ही सुंदर रूप देता चला जाता है। और ये जो नज़ारा आज यहाँ है, ये इस बात को साबित करता है कि ये सारे नज़ारे सिर्फ इनके चरणों के साथ। दास को आज भी याद आता है कि जब पहली बार सतगुरु माता जी ने ये आशीर्वाद दिया कि महाराष्ट्र का समागम महाराष्ट्र के कोने कोने में होगा, तो कई बार मैं अपनी सोच में पड़ जाता हूँ, कई बार मेरा अपना अनुभव बड़ा कुछ मुझे बताने लगता है। तो ऐसे ही बहुत से अनुभवी सेवादारों ने बड़े ही अच्छे भाव से कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, सालों साल से यहीं होता आया है, कहीं और तो हो ही नहीं सकता। तो यही अरदास कि आप ऐसी परीक्षाएं कभी किसी भी गुरसिख की, किसी के भी विश्वास की, कि ये जो अनुभव भी हैं वो तब तक ही मुबारक हैं जब तक इनकी सेवा में काम आ रहे हैं, इनके हुक्म को सत्वचन करने में काम आ रहे हैं। अगर मेरा अनुभव इनके वचन को काटने के काम आ रहा है या उसका कोई और मतलब निकालने के काम आ रहा है, तो फिर मैं अपना जीवन अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जी रहा हूँ, सतगुरु के अनुसार नहीं। और भक्ति सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के अनुसार होती है। तो ऐसी ही कामना सारे विश्व के लिए, सारी ही मानवता के लिए, सारे ही संतों के लिए, कि ऐसे नज़ारे बनते चले जाएं और विस्तार लेते चले जाएं, ये जो आपकी रोशनी है हर जगह पहुंचती चली जाए। और वही बात दोबारा कि खुद रोशन होंगे तो ही हम रोशनी फैला सकते हैं। तो इसलिए अगर बहुत ही, जो दास ने आज शब्द यूज़ किए, तो बड़े साधारण शब्द हैं, लेकिन सच साधारण ही है कि खुद हम अच्छे हो जाएं, अच्छाई अपने आप आ जाएगी, अच्छाई बहने लगेगी, प्रेम बहने लगेगा, शांति स्थापित होने लगेगी। घरों में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग के नक्शे बन जाते हैं जब इनकी शिक्षाएं घरों में आ जाती हैं, तो वो सारे ही संसार में भी इसी प्रकार का रूप बन सकता है और बनेगा अगर हम सब गुरु के सुर में अपने सुर मिलाते चले जाएं। सात संगत जी प्यार से कहना।